आए हम सब खुदावंद के हुजूर झुकें और अपने आप को तैयार करें, अपने आप को उसके हवाले करें, उसके सुपुर्द करें, रूहुल कुद्दस की मुख्तारी में अपने आप को दे दें, ताकि जैसा कि खुदा का कलाम हमें कहता है कि खुदा सच्चे प्रस्ताद ढूंढता है जो उसकी प्रस्तश रूह और सच्चाई यानी कि रूह की मामूरी और सच्चाई की बुनियाद यानी कि दिल से करें, जैसे उसने कहा कि अपने सारे दिल से अपने खुदावंद अपने खुदा बाप से मोहब्बत रख, अपनी सारी अकल, अपनी सारी जान, अपनी सारी कुव्वत से। सो इस बात को जहन में रखते हुए खुदावंद के हुजूर झुकेंगे और पहला यूहन्ना पहला बाप उसकी नामी आयत के मुताबिक किसी तरह की फिक्र, किसी तरह की सोच, किसी तरह का एहसास, किसी तरह की शर्म जो भी आपसे कमी कमजोरी गुनाह गलती सरजद हुई है, जिसका आपने अभी तक गुनाह का इकरार नहीं किया, खामोशी में उसके हुजूर झुकें और उससे बात करें। खुदा बाप, हम बड़ी दलेरी के साथ तेरे फजल के तख्त के पास आते हैं, क्योंकि जब जब हमें जरूरत होती है तेरा फजल तेरा रहम खुदावन खुदा मौजूद होता है और तू हमारी सारी कमजोरियों में हमें कुव्वत और ताकत देता है। खुदा बाप, आज जो कुछ भी हम तेरे कलाम में से सीखें हम सबको बड़ी हिकमत और दनाई दे, मुल्क पाकिस्तान के लिए और खुदावंद तमाम कलीसिया के लिए और इस खुदावंद जमीन पर जो मकसद तूने हमें दिया है उस मकसद को पूरा करने के लिए खुदावंद दिन ब दिन तेरी तरफ बढ़े, क्योंकि तूने कहा कि मेरे नजदीक आओ तो मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा और तूने कहा कि टटोलो और ढूंढो क्योंकि मैं हर चंद किसी से दूर नहीं। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा मकदस है, तेरे बेटे और बेटियां हैं, तेरा शाही खानदान है। आज जो कुछ सीखें हमारी जिंदगी में बाबरकत ठहरे और इस सारी रूहानी कश्मकश में यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले और उस फतह के लिए जो यीशु ने हासिल है तेरा शुक्र करते हैं। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हम लूका 19वां बाप उसकी 11वीं आयत से 27वीं आयत में से जो तमसील को सीख रहे हैं और हमने इसमें से बहुत सी गहरी सच्चाइयां सीखी हैं और सीखते रहेंगे जब तक खुदा का पाक रूह चाहता है कि इसमें से गहरी सच्चाइयां सीखें। और हम यहां पर सीख रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे आने तक लेन देन करना, और हमने इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से सीखा और मैं थकूंगा नहीं बल्कि बार बार याद दहानी के तौर पर कहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कि हम उसके कलाम से कुताएं नहीं बल्कि उसे मुसलसल तौर पर सुनते रहें, क्योंकि ईमान सुनने ही से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। सो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना, ये है आपकी मेरी और हर एक मसीही ईमानदार की जिंदगी का मकसद इस जमीन पर। उसने हमें जिम्मेदारी दी है, उसने हमें नेमतें बरकतें दी हैं और वो आएगा और हमसे और हर एक से हमारे कामों के मुआफ़ क्या देगा, बदला देगा और हमसे हिसाब लेगा कि हमने क्या क्या किया, जैसा हम इस तमसील में देख रहे हैं। पहला हाजिर हुआ, उसने कहा मैंने 1 से 10 शरफियां कमाई, उसे 10 शहरों पर इख्तियार दिया। दूसरे ने उसे 5 शहरों पर इख्तियार दिया गया और तीसरे ने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया। सो ये है ईमानदार और ये मंजर कशी तीसरे आसमान की है, जहां पर ईमानदारों को उनके कामों, उनकी मुश्किलों, मसीह के लिए दुख उठाने के बदले में क्या दिया जाएगा, सिला, अनाम, अजाज और बहुत से ताज जो बाइबल मुकद्दस कहती है मिलेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उन ताजों, उन नामों के बारे में जाने के बाइबल मुकद्दस में कहां कहां पर हैं और किस तरह हासिल होते हैं, किन किन लोगों के लिए किस तरह के हैं, हम सीख रहे हैं 3 आसमानों के बारे में। हमने कल देखा पहला आसमान, आपको याद होगा कि हमने पहले आसमान में 3 बातें देखी, अगर नहीं तो आज की याद दहानी के लिए आज फिर उन 3 बातों को दोहरा के हम दूसरे आसमान के बारे में सीखेंगे। जैसे मैंने आपको सिखाया, पहले आसमान पर हम जाहरी तौर पर कौन सी चीजों को देख सकते हैं और उसका अंदाजा और कलाम के आईना में जब तहकीक करते हैं, मुआयना करते हैं, उसको जांचते हैं, तो हम भरोसे के साथ कह सकते हैं कि ये पहला आसमान है जिसमें हमने पहली बात को देखा था, आसमान के परिंदे, यानी कि ये आसमान जो हम जाहरी तौर पर देख सकते हैं जहां पर परिंदे उड़ते हैं, जिसे हवा के परिंदे कहा गया है, फिजा के परिंदे कहा गया है। हमने इसके लिए हवाला जात को देखा था पदेश में से। फिर हमने दूसरे बात को देखा जो आसमान पर जाहरी तौर पर नजर आती है, आसमान से बारिश होती है, और ये पहले आसमान का क्या है, मंजर या नजारा है जिसे हम बाइबल मुकद्दस बयान करती है। और तीसरी बात हमने देखी थी कि आसमान से खुदा क्या करता है, औस भी भेजता है जो कि सब्जियों को पैदा करने के लिए और बहुत सी दूसरी चीजों के लिए है। सो ये तीन चीजें हमने देखी, और इसमें हमने देखा था कि खुदा बारिश को रहम की दौलत की तरह भी जाहर करता हुआ नजर आता है, और बारिश को खुदा बहुत से, जैसे नूह के दौर में गजब के तौर पर इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है, फिर सदूम और अमूरा में आग और गंधक की बारिश जो हुई है वहां पर हम देखते हैं खुदा का क्या है, गुस्सा नजर आ रहा है उन लोगों पर जिन्होंने उसे क्या किया, रद्द किया और मसलसल तौर पर गुनाह में जिंदगी गुजारी। और फिर फाराउन की हम देखते हैं जिंदगी के मिस्र में आसमान से ओले और आग बरसी। सो यहां इन हवाला जात में हम देखते हैं बारिश खुदा के गुस्से और उसके क्या है, गजब को जाहर करती है। लेकिन आज हम सीखेंगे दूसरे आसमान के बारे में। अब उम्मीद है कि अगर कोई आपसे पूछे, जहां आप किसी से बात करें कि पहला आसमान क्या है, तो आप बता सकें कि जहां पर हवा के परिंदे उड़ते हैं, जहां से बारिश, जहां पर बिजलियां गड़कती है, जहां से ओले पड़ते हैं, जहां पर हम बादलों को देख सकते हैं, जहां से ओस पड़ती है, ये है वो पहला आसमान जहां पर परिंदे और बारिश और तरह तरह के खुदा मौसम पैदा करता है। फिर आज हम देखेंगे, मेरे साथ निकालें दूसरे आसमान के बारे में। इससे पहले कि हम लूका 19वां बाप उसकी 11वीं आयत से 27वीं आयत की तमसील में उन अनामों के बारे में सीखें जो आसमान पर दिए जाएंगे, तीसरे आसमान पर हम दूसरे आसमान के बारे में जानेंगे कि ये क्या है। और कल मैंने आपको बताया कि हम देखेंगे कि दूसरे आसमान को हम किस तरह देख सकते हैं बाइबल मुकद्दस में, कि उस पर जाहरी तौर पर हमें क्या नजर आता है, और हम किस तरह कह सकते हैं कि ये दूसरे आसमान के बारे में बात है। सो मेरे साथ निकालें इफिसियों उसका 6वां बाप उसकी 10वीं आयत से 12वीं आयत तक आपके लिए पढ़ूंगा। आज हम देखेंगे कि दूसरे आसमान पर क्या कुछ नजर आता है और क्या कुछ मौजूद है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, ना किसी इंसान की सोच के मुताबिक, ना किसी इंसान के अपने इरादा या उसके अपने इलम के बायस, खुदा के कलाम की बुनियाद पर, क्योंकि बाइबल मुकद्दस खुदा का वो तहरीरी कलाम है जो नबियों ने और बहुत से लोगों ने रूहुल कुद्दस की मामूरी से मामूर होकर लिखा, और इसमें कोई भी बात ना कम है ना बढ़ाई गई है, ये खालस खुदा का तहरीरी कलाम है। और हम इफिसियों 6वां बाप उसकी 10वीं आयत से 12वीं आयत तक देखेंगे दूसरे आसमान के बारे में। सो यहां पर पालूस रसूल, जैसा कि हम सीख रहे हैं इफिसियों के खत में, हमने देखा कि तीन हिस्सों में ये खत है। पहला हिस्सा है मसीह में हमारी हालत, हमारा मुकाम, हमारी शनाख्त, जो पहले तीन बाब है। फिर चार बाब से लेकर छठे बाब की 9वीं आयत तक ये है मसीही जिंदगी गुजारना, हमारा इस तारीकी की दुनिया में नूर की नुमाइंदगी करना। और 6वें बाब की 10वीं आयत से लेकर 24वीं आयत ये है کہ اس تاریکی کے عالم میں، اس دم توڑتی ہوئی دنیا میں، مسیح کے لیے قائم رہنا اس روحانی جنگ میں، اس فرشتوں کی کشمکش میں جو ہمارے ارد گرد لگی ہوئی ہے۔ سو پالوس رسول یہاں پر غرض کرتا ہے، عرض کرتا ہے، دسویں آیت میں، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ ایمانداروں کو کہ مضبوط بننے کی ضرورت ہے۔ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ جب آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے تھے تو آپ نے اس فوج کو جوائن کیا، اس فوج کے سپاہی بنے جو کہ لشکروں کے خداوند خدا کی ہے، جو کہ خداوند خدا یسوع مسیح کی فوج ہے، جس کے آپ رکن بنے، جس کے آپ ممبر ہیں، جس کے آپ سپاہی ہیں۔ اور یہ جنگ کس کے ساتھ ہے؟ شرارت کی ان روحانی فوجوں کے لیے۔ اسی لیے پالوس کہتا ہے کہ خداوند میں اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے سب ہتھیار باندھنے کی ضرورت ہے تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ اور بارہویں آیت میں وہ اس بیان کو بیان کرتا ہے، اس سچائی کو بیان کرتا ہے کہ کیوں ہمیں خدا میں مضبوط رہنے کی ضرورت ہے، کیوں ہمیں اس کے ہتھیار باندھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ہماری جنگ ابلیس کے ساتھ ہے اور ہمیں اس کے مقابلے میں قائم رہنا ہے۔ اور ہماری جنگ کس کے ساتھ ہے؟ انسانوں کے ساتھ نہیں۔ بارہویں آیت کو دیکھیں، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے۔ خون اور گوشت سے مراد یعنی کہ لوگوں کے ساتھ اور پرانی گناہ آلودہ فطرت کے ساتھ جو ان میں بسی ہوئی ہے، ان کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، خون اور گوشت کے ساتھ ہماری کشتی نہیں، جنگ یا لڑائی یا کیا کہتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی فساد نہیں، پالوس کہتا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکم اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ ہماری، جیسے میں نے کہا، جنگ، ہماری کشتی، ہماری لڑائی جسمانی اور جسم اور خون سے نہیں ہے، بلکہ شرارت کی روحانی فوجوں سے ہیں جو کہ کیا ہیں اس دنیا میں تاریکی کے حاکم اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہیں جو آسمانی مقاموں میں۔ یہاں پر آسمانی مقاموں سے جو منظر بیان کیا گیا ہے، یہ ہے دوسرا آسمان۔ دوسرا آسمان وہ جگہ ہے جہاں پر ابلیس، اس کی ساری فوج، جسے کہ وہ گرائے ہوئے تمام فرشتے جنہوں نے خدا کی نافرمانی کی، جنہوں نے یسوع مسیح کو نہ کہا، جنہوں نے یسوع مسیح کو کہا کہ ہمیں تیری ضرورت نہیں، جنہوں نے یسوع مسیح، جس فرشتے جو کہ ابلیس ہے، جس نے یسوع مسیح پر الزام لگایا کہ تو تجھ میں صداقت نہیں، تو جھوٹا ہے، تو بے انصاف ہے، اس لوسیفر نے، جسے کہا جاتا ہے صبح کا ستارہ، ابلیس، شیطان، جھوٹوں کا باپ جسے کہا جاتا ہے، جھوٹ کا باپ کہا جاتا ہے جسے، اس ابلیس نے تین تہائی فرشتوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور مسیح کی مخالفت کے مخالف کھڑا ہوا، اور اس نے اعلان کیا کہ میں خدا کا اور مسیح کا اور اس تمام بنی نوع انسان کا دشمن ہوں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ سو یہاں پر دیکھتے ہیں ہماری جو جنگ، ہماری جو لڑائی، وہ حکومت والوں، اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں۔ یہ ہے وہ دوسرا آسمان جہاں پر ابلیس، اس کے فرشتے جو بدروہیں کہلاتی ہیں، جو ناپاک اس کے فرزند کہلاتے ہیں، جو اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا کیا ہے؟ نظام ہے۔ اور وہ تمام بدروہوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوسرے آسمان پر۔ اور وہ، ان کا کام کیا ہے؟ ایمانداروں کو گمراہ کرنا، لوگوں کو، غیر ایمانداروں کو گمراہ کرنا اور سچائی سے ناواقف رکھنا، سچائی سے उनकी वाकिफियत ना होने देना। सो ये है दूसरा आसमान। इससे पहले कि हम दूसरे आसमान पर होने वाली उस कश्मकश और उन सारी कार्रवाई को देखें बाइबल मुकद्दस में से, मैं चाहता हूं कि हम पहले देखें कि दूसरे आसमान का हम किस तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरा आसमान बाइबल मुकद्दस में किस तरह जाहिर होता है। सो इससे आज मैं चाहता हूं कि हम दूसरे आसमान पर देखें कि क्या कुछ है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, इससे पहले कि हम दूसरे आसमान पर और उसमें होने वाली उस सारी कार्रवाई को देखें उसमें क्या क्या है। सो दूसरा आसमान, आज हम दूसरे आसमान के बारे में सीखेंगे बाइबल मुकद्दस के आईना में से। दूसरे आसमान पर क्या कुछ नजर आता है और क्या कुछ मौजूद है। इफिसियों 10:12 के मुताबिक हमने पढ़ा कि रूहानी जंग है जो कि इबलीस और उसकी सारी बदरूहें दूसरे आसमान पर हैं, और उनका आना जाना पहले आसमान पर भी है और फिर वो जमीन पर भी रहती हैं, जमीन के इर्द गिर्द घूमती हैं, और लोगों को उनका काम क्या है, परेशान करना, खासकर गैर ईमानदारों को वो बदरूहें क्या करती हैं, गुमराह करती हैं कि सच्चाई की तरफ ना आए, बहुत से कामों में मुब्तला करती हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस गहराई में जाएं, हम सिर्फ देखेंगे दूसरे आसमान के बारे में कि क्या मौजूद है और उसमें क्या क्या पाया जाता है। हम किस तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कौन से आसमान के बारे में बात हो रही है या की जा रही है। पहली बात आपको सिखाना चाहता हूं, जब भी आप बाइबल मुकद्दस में आसमान का लफ्ज देखें और आसमान के साथ सूरज चांद सितारों को, ये पहली बात है जो आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं। जब भी बाइबल मुकद्दस में आप पहले देखें किस आसमान के लफ्ज को देखें जिसमें आप देखें आसमान के साथ सितारों की, सूरज चांद की बात हो रही है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दूसरा आसमान है जिस पर खुदा ने सूरज चांद सितारों को रखा है कि इस जमीन पर रोशनी डालें, और ये है दूसरे आसमान का पहला इजहार हमें नजर आता है। सो मेरे साथ निकाले पदेश उसका पहला बाप। हम जानते हैं कि पहले बाप में खुदा ने कायनात को बनाया, उसमें 7 दिन में खुदा ने सब काम को मुकम्मल किया, जो जो चीजें जरूरी थी खुदा ने बनी इंसान के लिए तैयार की। और जब हम पदेश पहला बाप उसकी 14वीं आयत से पढ़ते हैं तो यहां पर हमें दूसरे आसमान का मंजर मिलता है। जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी आप आसमान पर सितारों सूरज चांद को देखें तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दूसरा आसमान है। सो 14वीं आयत में यूं लिखा है, और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हो। पिछली बार के लिए माजरा चाहता हूं, मैंने लफ्ज नज कहा था, लेकिन भाई से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आपने ये गलत लफ्ज कहा है। सो 14वीं आयत में खुदा ने कहा कि फलक पर और खुदा ने कहा कि फलक पर नज हो, कि दिन को रात से अलग करें और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हों। यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने कहा कि फलक यानी के आसमान पर क्या होना चाहिए, नैयर होने चाहिए, यानी के रोशनी देने वाले वो दो अजीम चीजें जिन्हें सूरज और चांद कहा जाता है। आगे हम देखते हैं 15वीं आयत में, जिससे हम दिनों निशानों और सालों का इम्तियाज कर सकते हैं। और 15वीं आयत में खुदा कहता है, और वो फलक पर अनवार के लिए हो, यानी कि नूर करने के लिए, रोशनी करने के लिए हो, कि जमीन पर रोशनी डालें, और ऐसा ही हुआ। 16वीं आयत, सो खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुकूमत करे, नैयर अकबर जिसे सूरज कहा जाता है जो दिन पर हुकूमत करता है, और नैयर असगर के रात पर हुकूमत करे, जो के चांद है जो रात को क्या करता है, अपनी रोशनी जाहिर करता है, और उसने सितारों को भी बनाया और 17वीं आयत पर गौर करें, और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि जमीन पर रोशनी डाले। यहां पर जो लफ्ज फलक का इस्तेमाल हुआ है मतलब है आसमान, और आसमान से मुराद जहां पर आप सूरज चांद सितारों को देखते हैं तो आप इसका अंदाजा लगाते हैं कि ये क्या है, दूसरा आसमान है। पहले आसमान पर सिर्फ हवा के परिंदे उड़ते हैं, जहां से बारिश जमीन पर आती है, ओस पड़ती है, ये पहला आसमान है। लेकिन दूसरे आसमान पर आप देखते हैं यहां पर खुदा ने सूरज चांद और सितारों को बनाया और खुदा ने उनको फलक पर रखा ताकि जमीन पर रोशनी डालें और दिन पर और रात पर हुकूमत करें और उजाले को अंधेरे से जुदा करें, और खुदा ने देखा कि अच्छा है, शाम हुई सो सुबह हुई सो चौथा दिन हुआ। सूरज और चांद सितारों को सूरज और चांद को खुदा ने इसीलिए दूसरे आसमान पर मुकर्रर किया है कि वो क्या करें, उन पर हुकूमत करें। सूरज दिन पर हुकूमत करता है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, और रात के लिए चांद है जो रात पर क्या करता है हुक्मरानी करता है, और ये है दूसरा आसमान। फिर हम देखते हैं जैसा कि पदेश 15 बाप उसकी 5वीं आयत में, आपको याद होगा जब खुदा की बात इब्राहिम से हो रही थी तो खुदा ने उसके साथ वादा किया कि मैं तेरी नस्ल में से क्या करूंगा, तेरी नस्ल से सब कौमों को बरकत दूंगा और तेरी कौम और तेरी नस्ल सब कौमों में होगी, तेरी नस्ल बहुत मैं बढ़ाऊंगा। और वहां पर हम देखते हैं, जब मेरे साथ निकालें पदेश 15 बाप उसकी 5 आयत को, जहां से खुदा कहता है कि तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा, यानी कि उससे पैदा होने वाली औलाद जो कि इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ। सो 15:5 आयत में खुदा ने उसे कहा, और वो उसको, यानी कि खुदा उसको इब्राहिम को बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। क्या कहा? अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर सितारों को गिन सकता है। सो यहां पर ये हवाला भी दूसरे आसमान से मुतल्लिका है कि खुदा ने इब्राहिम को कहा कि दूसरे आसमान की तरफ देख, जिस तरह के आसमान पर सितारे हैं ऐसे ही तेरी नस्ल होगी, तेरी नस्ल होगी, तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और फिर जैसे मैंने कहा कि सूरज चांद क्या हैं, खुदा ने मुकरर किए हैं कि दिन और रात पर क्या करें, हुकूमत करें। मेरे साथ एक और हवाला देखें, जबूर 8 उसकी 3 आयत के मुताबिक। ये सिर्फ आपके साथ वो हवाला जात, बुनियादी हवाला जात शेयर कर रहा हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं, ताकि आप जब भी मुतालिया करें तो आप जानते हों कि किस आसमान के बारे में बात हो रही है। सो जबूर 8 उसकी 3 आयत में हम देखते हैं, जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है, जिसे हमने पदेश में देखा कि खुदा ने उसे बनाया, खुदा ने उसे क्या किया, वजूद दिया, खुदा ने उसे तैयार किया, और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकरर किया गौर करता हूं। खुदा ने उनको किस लिए मुकरर किया है? जबूर 136 उसकी 8 और 9 आयत को जब हम देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा है कि जबूर 136 उसकी 8 और 9 आयत को, दिन को हुकूमत करने के लिए आफताब, यानी कि दिन के ऊपर हुकूमत करने के लिए खुदा ने आफताब यानी कि सूरज बनाया, कि उसकी शफकत अबदी है, रात को हुकूमत करने के लिए महताब और सितारे के उसकी शफकत अबदी है। खुदा ने दिन सूरज चांद सितारों को इसीलिए बनाया है कि उन्हें इसीलिए मुकरर किया है कि वो क्या दें, रोशनी दें, उन पर हुकूमत करें, और ये क्या है, दूसरे आसमान से मुतल्लिका हवाला है। फिर हम देखते हैं यर्मिया 31 बाप उसकी 35 आयत को मेरे साथ देखें, ये वो बुनियादी हवाला जात हैं जिनमें वाज़ेह तौर पर आप आसमान, सूरज, चांद, सितारों को देख सकते हैं और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं और यकीनियां कह सकते हैं कि ये दूसरे आसमान की खुदा बात कर रहा है, कलाम बात कर रहा है। सो यर्मिया 31वां बाप उसकी 35वीं आयत में खुदा ने क्यों दिन के लिए सूरज और रात के लिए चांद को मुकर्रर किया, क्योंकि ये खुदा का मंसूबा है। 35वीं आयत में लिखा है, खुदावंद जिसने दिन को दिन की रोशनी के लिए सूरज को मुकर्रर किया और जिसने रात की रोशनी के लिए चांद और सितारों का निजाम कायम किया। ये खुदा है जिसने दिन और रात के लिए चांद और सूरज और सितारों का निजाम कायम किया। और ये हवाला जात जो किए गए हैं आपके साथ बयान दूसरे आसमान से मुतल्लिका है। आप नए अहदनामा में जितने भी हवाला जात देखें जहां पर आसमान के सितारों और सूरज को आप देखेंगे उस आयत में, आप कह सकते हैं कि ये दूसरे आसमान के बारे में है। बहुत से और हवाला जात हैं लेकिन हम सिर्फ बुनियादी तौर पर उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं सीखने के रॉ से कि आप जब स्टडी करें तो आपको पता हो कि आप किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। यह है वो पहली बात जो दूसरे आसमान पर हमें नजर आती है, सूरज, चांद और सितारे जो खुदा ने मुकरर किए हैं कि जमीन पर रोशनी दें। और ये क्या है दूसरा आसमान? और दूसरी बात जो हमें नजर आती है आसमान पर, दूसरे आसमान पर, अबलीस, शैतान और उसके तमाम नाफरमानी करने वाले फरिश्ते और किसी तरह की भी रूहानी जंग आप जब बाइबल मुकद्दस की किसी आयात या किताब या हिस्सा में देखते हैं और वहां पर आप देखते हैं कि आसमान के बारे में, जैसा कि आसमानी मकामों पर रूहानी फौजी हैं, सो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि ये दूसरा आसमान है, क्योंकि दूसरे आसमान पर अबलीस और उसकी सारी बदरूहें और उसकी नाफरमानी और खुदा के वो तमाम नाफरमानी करने वाले तमाम वो फरिश्ते जिन्होंने अबलीस को अपना खुदा, अबलीस शैतान को अपना खुदा, बड़ा खुदा माना है और खुद को छोटा खुदा जानते हैं, और यही अबलीस की क्या थी? ख्वाहिश थी। इसी बायस वो आसमान से गिराया गया कि उसने कहा कि मैं खुदा ताला की मानद हूंगा। और उसने क्या ख्वाहिश की? कि मैं खुदा से भी ऊंचा चढ़ जाऊंगा, यानी कि खुदा के तख्त पर उसको वो चाहता था इख्तियार रखना। फिर उसने कहा कि मैं क्या करूंगा, मैं सारी जमीन का हाकम बन जाऊंगा। उसने कहा कि मैं आसमान, जमीन और सब चीजों का मालिक बनना चाहता हूं। और ये थी उसका उसका गुनाह जो उसमें पाया गया, तकब्बर का गुनाह जो उसने, हसद का गुनाह रखा अपनी जिंदगी में, और यीशु मसीह के क्या की नाफरमानी और यीशु मसीह की तरफ से मुंह फेरा। सो अबलीस आप जब देखते हैं हवाला जात में, अबलीस आपको नजर आ रहा है किसी तरह की रूहानी जंग या रूहानी कश्मकश आपको नजर आ रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दूसरे आसमान की बारे में बात हो रही है। आगे चल पर हम इसमें से और गहरे तौर पर सीखेंगे, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि हम सीखें कि सूरज, चांद, सितारों को खुदा ने बनीनु इंसान को इसलिए दिया, इसलिए बनाया कि वो उनको क्या दे, रोशनी दें। लोगों को इसलिए सूरज और चांद सितारे खुदा ने दिए हैं ताकि रोशनी दें, ना कि लोग उनकी इबादत करें, ना कि उन्हें सजदा करें। और ऐसा ही हमें नजर आता है बनी इसराइल कौम ने जो गुनाह किया। मेरे साथ एक हवाला देखें। और ऐसा ही आज हमारे मौजूदा दौर में भी नजर आ रहा है, और ये किसका काम है? अबलीस का और उसकी तमाम बदरूहों का यही कारोबार है कि लोगों को गुमराह करना, सच्चे वाहद खुदा जिसने आसमान और जमीन को बनाया उसकी तरफ से फेर कर अपनी तरफ मुतवज्जा करना। वो अपने आप को अबलीस खुदा कहता है और वो झूठा है, वो अपने आप को खुदा कहता है लेकिन उसमें खुदा जैसी कोई बात नहीं पाई जाती। वो रहम नहीं कर सकता, उसमें सदाकत नहीं पाई जाती। खुदा झूठ नहीं बोलता, इब्लीस झूठ बोलता है। खुदा में नाराजगी नहीं पाई जाती, इब्लीस में नाराजगी पाई जाती है। खुदा इंसाफ पसंद है और इब्लीस ना इंसाफी करता है। ये इसमें से आप देख सकते हैं कि वो अपने आप को खुदा कहता है और बाइबल भी उसे बयान करती है। दूसरा करंथियों 4:4 के मुताबिक वहां पर लिखा है, मेरे साथ आप जब इस हवाला को देखते हैं तो वहां पर लिखा है, पालूस रसूल से बयान करता है कि इस जहां के खुदा यानी के मौजूदा दुनिया जो के तारीकी के हाकम के सुपुर्द है, जो इसकी इस मौजूदा दौर की इस मौजूदा जमी का हाकम अबलीस है, कहा गया है इस जहां के खुदा ने क्या किया है, वह है 4 में लिखा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अकलों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत और उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। अबलीस नहीं चाहता कि कोई भी यसु मसीह से हब्दी निजात का तोहफा हासिल करे, वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि जैसे वो हलाकत का फर्जंद है, जैसे वो हलाकत के लिए है, बहुत से लोग भी हलाकत में जाएं, अबदी मौत का शिकार बने। सो जैसे मैंने आपको कहा, खुदा ने आसमान के सूरज चांद सितारों को इसलिए बनाया कि रोशनी दे, ना के इंसान उसकी प्रस्तश और इबादत और उसे खुदा जानने लगे। और ऐसा गुनाह बनी इसराइल कौम में पाया गया। अस्तिस्ना 4 उसकी मेरे साथ निकालें 12 आय से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर हम जब 4 को देखते हैं तो खुदा ने क्या दिया है, मूसा के वसीला से बनी इसराइल कौम को 10 अहकाम दिए, उनको कहा कि इन पर अमल करो ताकि तुम कौमों में अकलमंद और दानिश ठहरो, ताकि जब तुम देखो, जब लोग उन्हें देखें तो वो जाने कि तुम बुजुर्ग और क्या हो, नहायत अजीम कौम हो। तुम्हारा मबूद जो के खुदामदों का खुदा यहोवा यसू है, जब लोग देखें तो वो कहें कि तुम्हारा खुदा अजीम है और उस जैसा कोई और खुदा नहीं कि अपने लोगों की दुआओं का जवाब दे। लेकिन ये सारी बातें जब मूसा ने उनको शरीयत की बताई तो 12 में क्या है, और खुदावन ने उस आग में से होकर तुमसे कलाम किया, तुमने बातें तो सुनी लेकिन कोई सूरत ना देखी, फकत आवाज ही आवाज सुनी, और उसने तुमको अपने अहद के 10 अहकाम बताए के उनको मानने का हुक्म दिया और उनको पत्थर की 2 लोहियों पर लिख दिया, लोहियों और जिसे तख्तियां कह सकते हैं हम, लिख दिया। उस वक्त खुदा ने मुझको हुक्म दिया के तुमको ये आयन और अहकाम सिखाऊं, ताकि तुम उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने के लिए जा रहे हो उन पर अमल करो, सो तुम अपनी खूब ही इख्तियार रखना क्योंकि तुम ने उस दिन जब खुदा ने आग में से होकर हूरब में तुमसे कलाम किया किसी तरह की कोई सूरत नहीं देखी, ता ना हो कि तुम बिगड़कर किसी शक्ल या सूरत की खोदी हुई मूरत अपने लिए बना लो, जिसकी छबी किसी मर्द या औरत या जमीन के किसी हैवान या हवा में उड़ने वाले परिंदों या जमीन के रींगने वाले जानवर या मछली से जो जमीन के नीचे पानी में रहती हैं मिलती हो, या जब तुम आसमान की तरफ नजर करें और तमाम अजराम में फलक यानी सूरज और चांद और सितारों को देखो, तो गुमराह होकर उन्हीं को सजदा और उनकी इबादत करने लगना, जिन जिनको खुदावन तुम्हारे खुदा ने रूहे जमीन की सब कौमों के लिए रखा है। सो मैंने कहा कि सूरज चांद सितारों को खुदा ने इसलिए मुकर्रर किया कि रोशनी दे, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि बनी नू इंसान ने उस घास खाने वाले बछड़े को अपना खुदा बना लिया और जिंदा खुदा का इनकार किया। आज यहां पर हम देख रहे हैं कि उन्होंने सूरज चांद सितारों और जमीन में और हवा में पानी में जो मूर्तें इंसान की और बहुत सी शक्लें, उसकी बुत परस्ती, उसकी इबादत, उसकी अकीदत करना शुरू कर दी। और ये क्या है, दूसरे आसमान में जो रूहानी फौजें हैं ये उनकी कारगर्दगी है कि लोगों को गुमराह करना। और यहां पर दूसरे आसमान में क्या नजर आता है, सूरज चांद सितारे और वो तमाम अजराम में फलक, यानी कि आसमान के वो नाज जो खुदा ने बनाए हैं, बनी नू इंसान को दिए हैं, रूहे जमीन की सब कौमों के लिए रखे हैं, लेकिन उन्होंने खुदावन से अपना मुंह मोड़ा। जैसा कि यर्मिया कहता है, मेरे लोगों ने, ईमानदार लोगों ने दो गलतियां की, मुझ आबे हयात के चश्मा को, यानी कि जो जिंदगी दे सकता है, उस चश्मा को रद्द करके अपने लिए शिकस्ता हौद, यानी कि वो उन्होंने टोए गाड़े, वो उन्होंने हौस खोदे जिसमें कोई जिंदगी, जिसमें कोई अमीर, जिसमें कोई ताजगी नहीं, शिकस्ता हौस खोदे। और मेरे लोगों ने दो गलतियां की और मुझ जिंदा खुदा को छोड़ा और अपने लिए शिकस्ता हौज खोदे जिनका पानी क्या है, ठहरा हुआ है, गदला है, गंदा है, सेहतियाबी नहीं दे सकता। आज मौजूदा दौर के बहुत से मसीही ईमानदारों का हाल यही है, बहुत से मसीही ईमानदारों का हाल यही है, क्योंकि बहुत से मसीही ईमानदार कहते हैं कि खुदा ही ने सबको बनाया है, उनकी इज्जत करने की जरूरत है, उनकी इबादत करने की जरूरत है। सबसे बड़ा झूठ, और वो मसीही ईमानदार इबलीस के फरेब में हैं और गुनाह आलूदा परस्तश कर रहे हैं, खुदा की परस्तश नहीं कर रहे। और जैसे यहां पर लिखा है, सूरज चांद और सितारों और फिर औरत या मर्द या किसी और शक्ल को बनाकर उसकी प्रस्तुति करना शुरू कर दिया। जैसा उन्होंने सुना, आज भी मसीही ईमानदार सुनते हैं, लेकिन उन्होंने अपने घरों में बहुत सी देवियों को, बहुत से बाबों को, बहुत से पीरों को अपना खुदा बनाया हुआ है। और जब हम किसी पर अपनी उम्मीद रखते हैं अपनी रहाई के लिए, अपनी मखलसी के लिए, जैसा कि हम पाते हैं कि बुतों पर बहुत से लोग रखते हैं अपनी उम्मीद, तो वो उन्हें खुदा का दर्जा देते हैं कि हमारा अच्छा कारोबार हो जाए, हमें किसी बीमारी से रहाई मिल जाए। पिछले दिनों में एक नौजवान आया और वो कह रहा था कि हमने जी शुक्रगुजारी करनी है, लोग यीशु मसीह के और शुक्रगुजारी फलां फलां बाबे की, जिसके साथ ना उनकी कोई समझ, ना कोई उसका वजूद, ना वो मुर्दों में से जी उठा, ना वो कोई कुदरत रखता है। और ये है अबलीस, जिसकी वो तमाम बदरूहें और बहुत से लोगों को गुमराह करने का उसका क्या है, काम है। और ये है मसीही ईमानदारों का हाल। और इसीलिए पालूस रसूल दूसरा थसलीकियों उसका दो बाप उसकी तीन और चार आयत में कहता है, मेरे साथ निकालें, कि खबरदार बेवकूफ ना बन जाना, अपने आप को सही राह पर लेके जाना। दूसरा थसलीकियों दो बाप उसकी तीन आयत से मेरे साथ देखें, दूसरा थसलीकियों दो बाप उसकी तीन आयत, किसी तरह से किसी के फरेब में ना आ जाना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो, जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या मबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। और ये है अबलीस, जो अपने आप को खुदा जाहिर करता है, जो बरूपिया है, जिसने आज बहुत से मसीही ईमानदारों की तवज्जो को हासिल किया हुआ है। और ये किसके बायस है, कम इल्मी के बायस। हफ्ते के हफ्ते बाइबल पढ़ने के लिए सुनने के लिए आगे चंद थोड़े से पैसे दे दिए पादरी साहब को, बात खत्म। ऐसी मसीहत का कोई भी अजर नहीं है। अपनी उन राहों के जो उन्होंने चुनी हुई है उन्हें मुड़ने की जरूरत है। और क्या है, अबलीस जो के खुदा या मबूद यानी के प्रस्तश का हकदार कहलाता है, वो कहता है मेरी प्रस्तश करो। और यही उसका गुनाह था, उसने कहा कि मैं खुदा ताला की मानद बनूंगा। और पालूस कहता है कि वो इस जहां का खुदा, और जैसे आगे चलकर हम देखेंगे ये क्या है, वो रूहानी जंग है जिसमें दूसरे आसमान पर जो के बद्रूहे हैं, जो कारागरी करती हैं, जिनकी कार्रवाई क्या है, ईमानदारों को गुमराह करना। और आप अपने इर्द गिर्द ईमानदारों को देख सकते हैं, बहुत प्यारी दलीलें देंगे, हाय ये मेरा बाबा है, ये मेरा चाचा है, ऐसी बहुत सी दलीलें देंगे, लेकिन वो गुमराह हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल मुकद्दस उनके दराजों में, उनके बर्तनों वाली लंबारियों में पड़ी है, लेकिन उस पर धूल पड़ती है, कोई पढ़ने वाला नहीं। और जब कोई बयान करे ये भी खुदा ने बनाए हैं, पालूस रसूल इसके बारे में भी कहता है, कि खबरदार कम इल्मी के बायस गुमराह ना हो जाना। और वो पहला करंथियों उसका 8 उसकी 5 आयत में कहता है, अगरचे आसमान व जमीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं, चुनाचे बथेरे खुदा और बथेरे खुदावंद हैं। अबलीस और उसकी बदरूहें अपने आप को खुदा जानती हैं, हालांकि वो है नहीं। इसी तरह बहुत से ईमानदार आज अपनी मर्जी के मालक हैं, और इसका मतलब है वो अपने आप को खुदा जानते हैं। और ये किसके बायस है? अबलीस की बदरूहों के असर के बायस, उनकी सोचों पर, ईमानदारों की सोचों पर उसने क्या किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, उनकी सोचों को अंधा किया हुआ है। और ये है दूसरे आसमान पर वो रहने वाली शरारत की रूहानी फौजों की कार्रवाई, के ईमानदारों को सच्चाई से फेरना। और उनका बयान क्या है, सबको खुदा ने बनाया इसलिए सबकी प्रस्तुति करनी चाहिए। बहुत सी और बातें हैं, लेकिन खबरदार कहीं ऐसा ना हो कि सच्चाई से फिरकर झूठ की तरफ गुमराह हो। सो दूसरे आसमान के बारे में हमने देखा कि उसमें क्या क्या नजर आता है। दूसरे आसमान पर हमें चांद, सितारे, सूरज और फिर शरारत की सारी रूहानी फौजें और उसकी कार्रवाई नजर आती है। आज हमने सिर्फ इसका तारफ देखा है, कल हम देखेंगे कि अबलीस इसी हवाला जात में से देखेंगे कि अपने आप को खुदा कहता है और किस तरह वो खुदा है और किस तरह लोग अपने आप को खुदा समझते हैं। सो आए हम खुदावंद के हजूर झुकें और दुआ करें। खुदा बाप, तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए जो कड़वा और सच्चा और सलाहकारी के लिए, और हमें अल्जाम देता है जब हम बुरी राहों पर होते हैं। खुदा बाप, इसी तरह कलीसिया के ईमानदार जो ईमानदार हैं और गुमराही में हैं, और बहुत से देवी देवतों और लकड़ और पत्थर के और घास चरने वाले जर्रों और बर्रों को अपना खुदा जाने हुआ है, खुदावंद उनकी आंखों को खोल ताकि वो उन तेरी नेहमतों और बरकतों से माला माल हो। सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।